ओम शांति। संगम युग है, कमाई का युग, या यूं कहें चढ़ती कला का युग। जितना शिव बाबा का महिमा है उतनी संगम युग की भी महिमा है। अभी यहां जितना कमाई कर सको हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी का कमाई दो युगों तक चलेगा। बाबा कहते हैं कमाई में कभी थको मत, कमाई में थकावट नहीं होती। पेटी भरता जाएगा तो उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, और भी करूं और भी करूं। परसों ही भंडारे में एक आत्मा को देखा, काफी उम्र था फिर भी बहुत भाग दौड़ करके सेवा में। फिर उससे कहा, भाई साहब आप थोड़ा लालची हो, कमाई में लालच तो रहता है ना। तो आत्मा कहती है एक जन्म का थोड़ी करना है, बहुत जन्मों का करना है। तो इसमें समझो हमारा एक घड़ी भी गई किसी कारणवश हम कमाई नहीं कर पाए तो क्या होगा, बहुत बड़ी घाटा। तब ऐसी क्या चीज है जो हमें कमाई से रोकता है, जो हमें कमाई करने नहीं देता? या तो हमारी स्पीड को ढीला कर देता है या तो पूरा ही रोक देता है। आए थे कमाई करने और कर क्या रहे हैं, तो ये भी प्रश्न आता है। आज लेते हैं चर्चा के विषय, व्यर्थ को समाप्त कैसे करें। खैर विषय तो बहुत विशाल है, व्यर्थ का व्याप्ति भी बहुत विशाल है, लेकिन आज कुछ एक बातों को, व्यर्थ के एक दो पहलुओं को हम देखते हैं। पहले ये डिसाइड कर ले कि व्यर्थ कहते हैं किसको, डेफिनेशन, व्याख्या। एक आम दृष्टि से देखा जाए, जिसका कोई महत्व नहीं, जिस बात का कोई महत्व नहीं या कोई इंपॉर्टेंस नहीं, फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो व्यर्थ कहा जाता है। तो अब हम अपने को देखना है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा अपनी जांच करो। तो जांच कैसे करेंगे? अभी जैसे हमने ड्रेस पहना तो हमें कैसा पता पड़ेगा कि मैं ठीक पहना हूं या नहीं पहना हूं, बिंदी रखा है नहीं रखा है, बाल कंघी किया नहीं किया, तो हमें अपना जांच करना पड़ेगा। तो हम आईने के सामने खड़े हो जाएंगे तो आईने बताता है कि तुम्हारे में ये कमी है। तो ठीक इसी रीति से अभी अपना जांच करने के लिए हमें दूसरों का सहायता तो नहीं लेने पड़ेगी, या हम चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि हम कभी यह नहीं चाहेंगे कि दूसरे हमारे तरफ उंगली करे कि तुम ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। फिर उससे अच्छा है खुद ही अपने को जांच करो। तो अभी आईना कौन सा? एक दृष्टि से हम ये भी सोच सकते हैं कि जो ईमानदारी की आईना है उसमें अपने को देखो, हॉनेस्टी। अब व्यर्थ और ईमानदारी इसमें क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, व्यर्थ बोल निकलता रहता है, फिर भी हमारे हॉनेस्टी में कमी होने के कारण हम उस व्यर्थ को पुष्टि देते रहते हैं, समर्थन देते रहते हैं कि ये कारण से मेरे अंदर ये चल रहा है, ये व्यक्ति ऐसा करता है तो मुझे ऐसा बोलना पड़ा। कभी हम क्यों क्या के चक्कर में पड़ते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों क्या कैसे कब, इन प्रश्नों में चक्कर में कोई पड़ा वो चक्रव्यूह में फंस गया। अब प्रश्न तो आता है हर एक को, क्योंकि आंखें देख रहे हैं, सबका पार्ट को देख रहे हैं, सबका पार्ट देखते सुनते प्रश्न तो मन में आएगा ही। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर व्यर्थ चलता ही नहीं, मैं व्यर्थ बोलता ही नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। बस हम पहचान नहीं पा रहे हैं कितना व्यर्थ हमारे अंदर है, इसका पहचान हमें बहुत कम है। बाबा कई बार मुरलियों में इशारा देते हैं, तो आज की हमारी ये चर्चा में हम एक साकार मुरली का बाबा का महावाक्य लेंगे। बाबा कहते हैं ये 18/11/19 का मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बुद्धि में सदा रायल ख्यालात चलते रहे। अब बाबा ने कहा वाहियात बात, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं, उस संकल्प के बिगर भी चल जाता था काम, फिर भी हम कर रहे हैं, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, जो हमारे हाथ में है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, जो मैं सोच रहा हूं इस वक्त वो मेरे हाथ में है, जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे हाथ में है, उसकी तरफ अटेंशन कम और जो अन्य बोल रहे हैं उसकी तरफ अटेंशन ज्यादा, ये उल्टा चक्कर हो गया ना। तो इस कारण से व्यर्थ का अंदर बहुत चक्कर बढ़ गया। इसलिए बाबा कहते हैं अपने अंदर जांच करो, मेहनत करो। आज की मुरली में बाबा ने यह शब्द भी लिया मेहनत। बाबा मेहनत को अलग अलग भाव से उपयोग करते हैं। एक तरफ कहते हैं मेरे बच्चे मेहनत करते हुए मुझे देखा नहीं जा सकता, तो उस सेंटेंस का मेहनत अलग, और आज कहा ऊंची पद पाना है तो बिगर मेहनत थोड़ी मिल सकता है ऊंची पद, नहीं मेहनत तो करना पड़ेगी। वो कैसा मेहनत, बाबा किस भाव से आज कहा मेहनत, हमें कोई बड़ी बड़ी बोरियां उठानी पड़े या कसरत करनी पड़े, ऐसा मेहनत है क्या जो पसीना बहाए? नहीं, कदापि नहीं। फिर वो दिमाग का मेहनत? दिमाग का मेहनत भी नहीं। फिर किसको बाबा आज मेहनत कहा? जिस मेहनत से एक एक कदम में पद्मों की कमाई हो। अभी हम तपस्या भूमि में हैं, अगर आज से अभी से दृढ़ संकल्प ले कि बाबा ने जो कहा मेहनत, वो मेहनत मैं करूंगा, मेरा एक एक घड़ी जाने तक मैं यहां सफल करूंगा, सिर्फ दृढ़ संकल्प करना ही अपना काम है, बाकी का रास्ता वो खुद बाबा खुद दिखाएगा, ऐसे चलो ऐसे चलो। अगर दृढ़ संकल्प ही नहीं, कुछ एम ही नहीं, मैं यहां किस लिए आया हूं, किस लिए यहां बैठा हूं, मुझे क्या करना है, कुछ गाइडलाइंस नहीं है, कुछ एजेंडा, मुझे ये करना है, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? इधर उधर देखेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा वाहियात बातों में, अपना टाइम ना चाहते हुए भी वेस्ट जाएगा, हमारा मन जरूर इधर उधर भटकेगा, आंखें इधर उधर, ना चाहते हुए भी वो दृश्य दिखाई पड़ेंगे जिस दृश्य के द्वारा हमारे संकल्प चले। अगर हम अपनी कमाई में मस्त रहे तो वो दृश्य दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति को बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो। देखते हुए भी कैसे नहीं देखो? सिर्फ ये आंखें खुले हैं लेकिन मन ध्यान नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है? मन ध्यान नहीं दे रहा है, उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, इसके तरफ ज्यादा ध्यान है। हमारे आदरणीय दादी जी जब भी समा में आती है तो तीन बार ओम शांति कहते, पहली बार मैं कौन, दूसरी बार मेरा कौन, तीसरी बार मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है उसका मतलब क्या? इस वक्त मुझे क्या करना है, क्या करना है माना उसका सूक्ष्म रूप से क्या सोचना है, यह भी हो जाएगा। अगर हम अपने मन को, मन अपना नौकर है ना, अपने नौकर को स्पष्ट निर्देशन नहीं दिया तुम्हें ये सोचना है ये नहीं सोचना है तो क्या होगा? अगर हम मन को काम नहीं देंगे तो मन हमें काम देगा, इतना काम देगा इतना काम देगा, बाद में हम बोलेंगे मुझे फुर्सत नहीं, बहुत बिजी हूं बहुत बिजी। हाँ सचमुच बहुत बिजी, लेकिन किस में? तो हमें मालिक बनके मन को काम देना चाहिए। जैसे घर में नौकर होते हैं तो नौकरों को खाली बैठने देते हैं? एक काम करो उसके बाद दूसरा काम करो, इंतजार में रहते हैं वो काम पूरा हो गया तो ये बोलूंगा, पहले से लिस्ट तैयार, क्योंकि इरादा ये रहता है कि जितना हो सके नौकरों से काम लो। अभी सोचने का काम हमारे मन कर रहा है, मन क्या सोच रहा है उसके ऊपर हमारा स्थिति निर्भर है। मन अच्छा सोच रहा है तो स्थिति अच्छी, मन गलत सोच रहा है तो स्थिति अच्छी नहीं, मन साधारण सोच रहा है तो ना उधर का ना इधर का, बीच का स्थिति, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो अब आई बात मन को स्पष्ट निर्देशन देना। मन नौकर भी है और भी क्या है, मन हमारा मित्र भी है, मन मंत्री भी है। तो मन के साथ हमें बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हे मन, तू मेरा मित्र है, तू वही सोच जिससे मेरा खुशी बढ़े, उमंग बढ़े, मुझे हल्कापन लगे, तो ऐसा कभी मत सोचना जिसके कारण मुझे निराशा आ जाए, मेरा उमंग उत्साह कम हो, मेरा दिशा भटक जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये निर्देशन देना है कि नहीं देना है? देना है। तो कभी कभी कहा जाता है जब हम कर्तव्यों में लग जाते हैं तो मन की तरफ अटेंशन कम हो जाता है, मन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। एक दृष्टि से ये सही भी है, क्योंकि हमारे जो संकल्प चलते हैं ये बहुत फास्ट, कितना टाइम लगता है संकल्प चलने में, दृश्य देखा उसके पीछे पीछे ही संकल्प आ गया। हमारा छुट्टी लेके थोड़ी आता है हमारा संकल्प, मैं आऊं, नहीं, बिगर छुट्टी आ जाता है, तो बहुत फास्ट। तो इस कारण से हमें उसका कभी कभी लगता होगा कि मन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तब हमें रास्ता थोड़ा सा अलग अपनाना चाहिए। हम अपना फीलिंग्स पर ध्यान दें, भावनाओं पर, क्योंकि भावनाएं जांच करना भी आसान है, उसका फर्क भी आसान है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि फीलिंग्स, गुड फीलिंग और बैड फीलिंग। गुड फीलिंग किसको कह जाता है? खुशी, उमंग उत्साह, आनंद, लव, ये सब गुड फीलिंग है। इसके अपोजिट बैड फीलिंग है। तो मैं आपको अभी एक सिद्धांत बताऊंगा, जिसके पास नोटबुक और पेन है आप कृपया एक सीधी लाइन लगाए, जिसके पास बुक और पेन नहीं है मन में ही एक कल्पना के द्वारा एक लकीर खींचे, ठीक है? और इसको समान अंतर में 11 बिंदी लगाकर 10 भागों में बांटे, 1, 2, 3, 4, 11 तक। तो 11 बिंदी लगाया तो लकीर कितने भाग बट गया? 10 भाग, ठीक है? तो बीचवा बिंदी उसके नीचे आप लिखो 0, शून्य। तो अपने दाएं तरफ, राइट साइड, 0 के बाद फर्स्ट, सेकंड, यानी 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड में बाएं तरफ -1, -2, -3, -4, -5. शायद माताओं को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बाद में बताते हैं इसका भाव अर्थ क्या है, क्योंकि आजकल पॉजिटिव और नेगेटिव का बात तो बहुत चलता है। माताएं भी जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो भी थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव हम कहते हैं सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, जिससे हमारी खुशी बढ़े, उमंग उत्साह बढ़े उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जिससे निराशा आ जाए, मायूसी, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स का एक फैमिली, बहुत बड़ा फैमिली। तो अभी बीच का क्या हुआ? बीच का जीरो है। जीरो का मतलब क्या? उस तरफ पॉजिटिव भी नहीं, इस तरफ नेगेटिव भी नहीं, बीच का। साधारण गणित में इसको नंबर लाइन कहते हैं, संख्या रेखा। ठीक, तो आज का हमारी चर्चा में यह क्यों बीच में घुस गया? क्योंकि एक सिद्धांत हमें बनाना है। तो अभी हम अपने से पूछे कि अभी मैं इस घड़ी, दिस मोमेंट, कहां खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं मैं? मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, उमंग उत्साह, आनंद। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पॉजिटिव साइड में खड़ा हूं। तो अगर मुझे बोर लग रहा है या किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी ने कुछ काम बोला था वो किया नहीं, उसके ऊपर व्यर्थ संकल्प चल रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो कहां खड़ा हूं? -1, -2, -3, -4। जितना ज्यादा नेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस। ठीक है, अभी इसमें हॉनेस्टी चाहिए। तभी तो उस समय बोला कि हॉनेस्टी की आईना से अपने को देखना पड़ेगा। ये तो अपनी वाली बात है ना, कोई दूसरों से शेयर तो नहीं करेंगे। तो हॉनेस्टी से देखो कि मैं खड़ा हूं कहां। अभी ठीक है, अभी समझो मैं नेगेटिव में ही खड़ा रहा, तो फिर क्या आगे क्या? तो हमें कोशिश करके अपने अंदर श्रेष्ठ भावनाओं का जागृति करना है। तो इसके लिए बाबा ने बहुत सारे हथियार दिए हैं, हथियार, टूल्स। जैसे कारीगर के पास अलग अलग टूल्स होता है, हथौड़ा होता है, पकड़ होता है, कैंची होता है। टूल्स के बिना तो काम चलता नहीं। और जिस समय जो हथियार अपनाना हो, जिस काम के लिए जो हथियार अपनाना हो, उसी से काम चलेगा। आपको चाहिए था स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, आपके पास नहीं है, आप कैंची से काम चलाने का कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा। कहने का मतलब कि अलग अलग समस्या के लिए बाबा ने अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेकिन कारीगर का काम क्या है कि अलग अलग हथियारों को कैसे अपनाना जाए, इसका तरीका उसे आना चाहिए। तो हमें भी ड्रामा अलग अलग दृश्य सामने दिखाता रहेगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को यह चाहिए कि इस वक्त इस दृश्य को देखते हुए, सुनते हुए, मैं अपनी स्थिति को पॉजिटिव की तरफ ही कैसे चलूं। दिखने में तो आ रहा है कि अकल्याणकारी दृश्य, किसी दो व्यक्ति सामने लड़ रहे हैं, लौकिक का तो छोड़ो, बीके, उसको देखते हुए भी हम पॉजिटिव साइड में रहे, उसका असर हमारे ऊपर ना हो, यह है ना साधना। तो इसके लिए पहले से ही हमारे पास हथियार तैयार रहना पड़ेगा। उस परिस्थिति में काम आएगा मुझे क्या करना है। अभी वो तो लड़ रहे हैं, उनका पार्ट अपना, अभी मेरा पार्ट क्या, मेरा पार्ट क्या, मुझे क्या करना है, इस वक्त समय की मांग क्या है, कॉल ऑफ टाइम कहते हैं, समय की पुकार। तो समय कह रहा है अभी तुम शक्तिशाली वाइब्रेशन दो। तो क्या वाइब्रेशन ऐसे ही निकलेगा, नहीं, उसके लिए थोड़ा सा अंदर सिद्धांत बना के रखना पड़ता है। सिद्धांत जो हमने ही सोचकर समझकर फाइनल किया, हाँ ऐसी परिस्थिति में मैं ऐसा रहूंगा, क्योंकि खुद का जो सिद्धांत होता है उस पर हम अड़े रहते हैं, हिलेंगे नहीं इतना जल्दी, नहीं तो हर बार हम बहाना देते रहेंगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा बोला इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा, ये लोग ऐसे करते रहे इसलिए मेरा संकल्प ऐसा चला। बाबा कहते हैं आखिर कब तक उंगली दूसरों के तरफ करते रहोगे, घाटा हमारी हो रहा है, टाइम अपनी वेस्ट जा रहा है, तो हमें खुद का प्रबंध खुद ही कर लेना चाहिए। हम सोचते रहेंगे ये थोड़ी सी सुधर जाएगा तो मैं थोड़ा सुधर जाऊंगा, मेरा मन में शांति हो जाएगी, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो मेरा इंतजार ऐसा ही रह जाएगा। तो साधना यही है कि हमें कैसे भी परिस्थिति पर मेरी भावनाएं मेरी संकल्प अच्छे चले। इसके लिए ज्यादा मेहनत तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने का, थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करने का। इसलिए बाबा ने इतना अच्छा माहौल बना के दिया, तपस्या भूमि तैयार करके दिया। हम आते हैं सब चक्करों से छुटकारा पाकर यहां खुद के अंदर झांकने के लिए, कहते हैं जर्नी इनटू द सेल्फ, ये अपने अंदर उतर कर देखने के लिए कि कितना व्यर्थ अंदर भरा हुआ है। तो कभी कभी हमारे मन को हमें समझाना पड़ता है कि ये ठीक तरीका नहीं है, ये है। इसलिए मन कोई लॉजिक या तर्क का आधार नहीं मांगता है। मन को मालूम नहीं कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, हम अपने बुद्धि द्वारा उसको सोच समझ के सिद्धांत बनाना पड़ता है। मैं एक छोटी सी कहानी द्वारा इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। गांव में एक अमीर रहता था, गांव में सबसे बड़ा अमीर, पर जितना बड़ा अमीर उतना बड़ा मनहूस कंजूस, खुद के लिए भी एक पैसा खर्च ना करे, हमेशा पुराना फटे हुए कपड़े पहनता था, तो इसका नौकर देख देख अंदर ही पछताता था, अरे मेरा मालिक इतना बड़ा अमीर फिर भी। तो एक दिन रहा नहीं गया, बोल बेटा जी मालिक, आप तो गांव में सबसे बड़े अमीर हो, फिर भी आपका कपड़े तो उस अमीरी का सबूत नहीं देता। तो तुरंत उत्तर मिला, अभी मुझे अच्छा कपड़ा पहन के क्या करना है, किसको जाहिर करना है कि मैं अमीर हूं, इस गांव में सभी तो जानते हैं मैं अमीर हूं, फिर मुझे अमीरी का प्रदर्शन करने का क्या जरूरत है। बस नौकर चुप हो गया, क्योंकि उत्तर तो सही था, लेकिन सही मौके के लिए इंतजार करता रहा। एक दिन शहर में कुछ काम पड़ा तो अमीर निकला शहर जाने, तो नौकर सोचा आज तो मालिक अच्छा कपड़ा पहनता होगा, लेकिन नहीं, उस दिन भी वही का वही। फिर पूछा, मालिक आज तो शहर जा रहे हैं, कम से कम आज तो अच्छा कपड़ा पहना करो। फटाक से उत्तर आया, अरे क्या जरूरत है, उस शहर में कौन हमें पहचानता है कि ये अमीर है, ऐसे गांव से आया है, कोई नहीं पहचानता, चलो कोई भी कपड़ा चलेगा। मतलब क्या, मतलब क्या, एक ही परिस्थिति को या एक ही घटना को अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन नतीजे अलग अलग। तो कई कहते हैं हमारे अंदर व्यर्थ जरूर चलता है, क्योंकि हमें बहुतों से सुनना पड़ता है, थोड़ा भी गलती हुआ सुनाया गालियां। कहते हैं अगर अज्ञानी सुनाते तो इतना संकल्प नहीं चलता, लेकिन अपने भाई बहन जब हमारी निंदा करते हैं तो थोड़ा सा संकल्प ज्यादा चलता है। तो सोचो अपने ही लोग हैं ना, अपने ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के हैं, तो एक परिवार में हमेशा लेन देन होता है, कभी थोड़ा नरमी से कभी थोड़ा गर्मी से, लेकिन हमें हमेशा भावार्थ को देखना चाहिए, न कि उसने कैसे बोला, किस आवाज से बोला, उसको महत्व नहीं देना चाहिए। हमसे कुछ गलती हुई, उसने इशारा किया, इशारा कैसे किया इसका महत्व नहीं रखता है, लेकिन इशारे तो मेरा परिवर्तन के लिए किया गया था। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर पॉजिटिव भावनाओं को इतना जागृत करके रखो, हमेशा आप पॉजिटिव साइड में रहो, एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, समझो आप प्लस 5 पर है, फिर से वापस ले आओ वो नंबर लाइन को, जो लिखे हैं उसके तरफ एक बार देखो। उस टाइम पे मैं कहा था कि 0 का मतलब क्या है, उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो 0 का मतलब क्या, कि आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस यूं ही चल रहे हैं। तो उसका खतरा क्या है, एक छोटा सा भी ऊपर नीचे की घटना हुई, छोटी सी भी बात आ जाए, तुरंत आप किस तरफ आ जाओगे, माइनस की तरफ। आप 0 पर हैं, किसी ने थोड़ा धक्का मारा लेफ्ट की तरफ, आप कहां आओगे, -1, या जोर से धक्का लगा -2। तो कहने का भाव यह है कि आप शक्तिशाली विचारों को, पॉजिटिव भावनाओं को हमेशा मन में नहीं रखा, मन को खाली रखा, तो आप जीरो पर हैं। तो तुरंत ही नेगेटिव विचारों का प्रभाव आपके ऊपर तुरंत पड़ेगा, आप तुरंत नेगेटिव साइड में आ जाओगे, आपके अंदर नेगेटिव भावनाएं जागृत होना चालू हो जाएंगी। तो सेफ्टी यह है कि बाबा रोज रोज मुरली में हमें पॉजिटिव विचारों का खजाना दे रहे हैं, उसका मंथन में, उसका अनुभव में हमेशा रहने से हम रहेंगे +4 +5। अगर उस स्थिति में कुछ भी चोट लगा तो थोड़ा सा हम +5 पर हैं, थोड़ा कम +4 या +3 पर आएंगे, लेकिन नेगेटिव साइड में नहीं आएंगे। मतलब बहुत खुशी में है, खुशी थोड़ा सा कम होगी, लेकिन फिर हम बढ़ा सकते हैं। अगर नेगेटिव साइड में आ गए, फिर उस तरफ चलने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम उसमें लगाने पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं पॉजिटिव भावनाएं, ऐसी कौन सी पॉजिटिव भावनाएं हैं जिसको जागृत रहने से हम हमेशा +4 +5 पे रहेंगे। एक तो हुई प्रेम भावना, लव। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा शक्ति लव, प्रेम है। क्योंकि हमेशा प्रेम की तुलना की जाती है माताओं के साथ, प्रेम सबसे जास्ती किस में रहेगा, माताओं में रहेगा। कि माता है तो उदाहरण देते हैं कि माता को अपने बच्चे कैसे भी हो प्यारे लगेंगे। क्यों प्यारे लगेंगे? माताएं बच्चों को छोटेपन से पालकर पोषकर पढ़ाकर बड़ा करते हैं। बड़ा होने के बाद अगर लड़का माताजी का देखभाल नहीं करता है, उल्टा तंग ही करता है, फिर भी माता कहेगी मेरा बच्चा। ऐसे क्यों कि माता ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा बच्चा है। तो हमें भी कोशिश करके देखना चाहिए, हम भी कभी माता के सीट पर बैठकर सारी दुनिया को देखें। किसी व्यक्ति को हम उसके कमियों के कारण थोड़ा सा अंदर नेगेटिव भाव प्रकट कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, लेकिन आपका सीट बदली करके देखो, अभी कौन सा सीट पर बैठो, माता का सीट पर बैठो। एक बार स्वीकार कर लिया ये मेरा है, हम मेरा बच्चा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा भाई तो कह सकते हैं ना। अगर उतना कहा तो भी बहुत सारा नेगेटिविटी उसी में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा कहते ही हमारे कर्तव्य जागृत हो जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। बाबा ने साफ साफ मुरली में कहा कि बच्चे अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, किसी के अंदर कुछ गलती देखते हैं तो तुरंत अंदर व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है, ये ऐसे क्यों करता है, ऐसे इसको नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कर्तव्य पीछे रह जाता है। कर्तव्य क्या था? उस व्यक्ति को परिवर्तन होने की शक्ति दो। शक्ति कैसे देंगे? अपने शुभ संकल्पों द्वारा। बाबा ने बहुत बार स्लोगन भी दिया, दुआएं लो दुआएं दो। तो दुआएं कैसे देंगे? शुभ संकल्पों के द्वारा। बाबा ने कहा इतना बिजी हो जाओ दुआएं देने में, फिर देखना आपका व्यर्थ ایسا ختم ہو جائے گا پھر ڈھونڈنے لگو گے اتنا ویرت تھا میرے اندر سب کہاں گیا غائب. کیونکہ آپ نے ابھی سیٹ بدل دیے, اپنے کرتویہ کا جاگرتی آپ کے اندر آ گیا تو آپ وہی سوچنے لگے جو آپ کو سوچنا چاہیے تھا, آپ وہی بولنے لگے جو آپ کو بولنا چاہیے تھا. تو بابا بھی ہم بچوں سے یہی چاہتے ہیں. تو کہاں پریم بھاو پرگٹ کرو, ہر چیز کو, ہر گھٹنا کو, ہر ویکتی کو سویکار کرنا پڑے گا ہمیں. ہم بھی بابا کے بنے تو کیسے تھے, اچھے تھے, ٹھیک تھے؟ نہیں. بابا نے کہا بچے تم جو بھی ہو جیسے بھی ہو لیکن تم میرے ہو. اسی ریتی سے ہم اپنے پریوار کے سدسیوں کو بھی ایک بار اندر سے پریم پوروک ہم بھی کہہ سکتے ہیں تم جو بھی ہو جیسے بھی ہو میرے بھائی ہو. اوپر سے نہیں تو اندر سے کہہ کر, من میں کہہ کر دیکھو. تو جو اندر ویرت کا کمپلینٹ ہم کرتے ہیں بہت سارا ختم ہو جائے گا. کبھی کبھی ہمارے اوپر ہمیں ہی ہنسی آئے گا, میں ایسا سوچتا تھا, ایسا بولتا تھا. کیونکہ جب آپ اپنا ستھتی کو بہت اونچا اٹھا لیتے ہو تو اس اونچی ستھتی سے آپ کا پاسٹ کیسا لگے گا آپ کو, ہنسی کی بات ہی لگے گی. تو بابا کہتے ہیں ستھتی کو اونچے اونچے اٹھاتے چلو, نو لمٹ. پرشارت کے لیے کوئی لمٹ ہے کیا؟ اتنا کرنا ہے مجھے, اتنا بابا کا یاد کرنا ہے, بس ہو گیا آج میرا؟ نہیں, جتنا کرو اتنا اچھا. تو سوا پرشارت کے لیے کوئی لمٹ نہیں, کوئی آپ کو پیچھے کھینچنے والے نہیں. تو ہمیں مدھوبن میں یہاں رہتے سوا پرشارت کی آنند لینا چاہیے. ویرت کے ساتھ انرجی کا بھی کنیکشن ہے. بابا کہتے ہیں سنکلپ چلانے میں انرجی خرچ ہوتی ہے, بہت زیادہ سوچو تو کیا ہوگا, انرجی بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا. اس دن آپ کو لگے گا آج بہت تھک گیا, پتہ نہیں کچھ محنت تو کام تو نہیں تھا پھر بھی تھکاوٹ جیسا محسوس ہو رہا ہے. تو تھکاوٹ کس میں ہوا؟ آپ کا انرجی بہت چلی گئی. تو اس لیے انرجی ڈپارٹمنٹ میں سلوگن بنا کے رکھا, انرجی سیوڈ از انرجی جنریٹڈ. آپ جتنا انرجی کو بچاتے ہو, بچانا مانا یوں سمجھو کہ آپ انرجی کا اتپتی کیا. تو اس معاملے میں ہمیں بہت سوارتھی ہونا پڑے گا. سوارتھی مطلب ہر وقت یہ سوچو کہ مجھے یہ سوچنا ضروری ہے یا اس وقت یہ بولنا ضروری ہے. خیر اتنا وقت تو ہمیں نہیں ملے گا کیونکہ سنکلپ تو اتنے میں چل جاتا ہے. پھر بھی ہم تھوڑا دھیان رکھیں گے تو سنکلپوں کا سپیڈ دھیرے 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 کم ہو جائے گا. کیونکہ ہم کہتے ہیں پازیٹیو سنکلپ ہمیشہ کم ہوتے ہیں, دھیرے دھیرے چلتے ہیں, لیکن اتنا ہی آنند کا انوبھو ہمیں کرائے گا. और नेगेटिव, नेगेटिव का तो चैन रिएक्शन होता है, एक के पीछे आते रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों, क्या, कैसे, कब, इसका क्यों लग जाता है, क्यों का पता नहीं अंत, एक एक प्रश्न आकर जुड़ता रहेगा, फुल स्टॉप तो है नहीं। तो नेगेटिव संख्या में ज्यादा होता है, क्वालिटी में कम होता है। तो नो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का बात आया तो एक बात और जोड़ना था। फैक्ट्री में जो चीज बनती है उसका क्वालिटी चेक होता है, मार्केट में जाने से पहले क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट उसका गुणवत्ता चेक करते हैं, क्योंकि कहीं घटिया चीज मार्केट में जाए और कंपनी की नाम बदनाम ना हो, इसकी तो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अभी समझो हमारे दिमाग मस्तिष्क भी एक फैक्ट्री है, उसमें क्या उत्पत्ति होगी, संकल्प, संकल्पों की प्रोडक्शन हो रहा है उस फैक्ट्री में। तो हम कभी सोचा कि मैंने अपने फैक्ट्री में क्वालिटी चेकिंग का डिपार्टमेंट लगा रखा है, क्वालिटी चेकिंग होती है, मेरा संकल्प लगातार चल रहा है, कब से, सवेरे आज अमृत वेला जब से आंख खुली तब से फैक्ट्री चालू, अब तक चल ही रहा है, कब रुकेगी फैक्ट्री, रात को। तो जितने सारे प्रोडक्ट उत्पाद, तो इनका क्वालिटी चेकिंग कौन करेगा, तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर क्वालिटी चेकिंग नहीं किया तो घटिया चीज निकलती रहेगी, फिर हमें ही तकलीफ देगा, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा तो भी हमारी खुशी गायब कर देगा। ये सबसे बड़ी नुकसान होता है व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बात का। लेकिन उसका भी एक जाल है, बाबा कहते हैं व्यर्थ भी कभी कभी आनंद देता है, रुचि देता है। ये अपने में एक और एक बड़ी सब्जेक्ट हो गई, तो आश्चर्य लगता है व्यर्थ में ऐसे क्या रुचि होगी, होगी ना, तभी तो मन बार बार उस तरफ जा रहा है। तो हमें अपने अंदर वैराग्य दिलाना पड़ेगा, क्योंकि तुलना की जाती है जंक फूड के साथ। जंक फूड समझते हो ना, आजकल बाजार में बिकते हैं, पन्नों के अंदर पैकिंग हो गया आता है, तला हुआ चीज, ये वो, जंक फूड कहते हैं। पेट भरेगा लेकिन एनर्जी नहीं देगा, तो फिर जंक फूड ज्यादा खाओगे तो फिर क्या होगा, मोटापा। कहते हैं आजकल छोटेपन में ही मोटापा का बीमारी बहुत बढ़ गया, क्योंकि बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। अभी वो तो हो गई स्थूल बात, अब हमारा मन भी जंक फूड खाता है। सारा दिन आंखें जिसको भी देखेगा, जो भी घटनाओं को देखेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, क्योंकि मन को खाली रखा, मन को हमने प्री ऑक्यूपाइड नहीं रखा, पहले ही काम नहीं दिया। आज मैंने मुरली ये सुना बाबा की, इसमें से ये पॉइंट पर मैं विचार करूंगा। बाबा की पॉइंट्स को विचार तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो कहते हैं बाबा बुद्धि रूपी तिजोरी में बंद करके रख देते हैं ना। पुस्तक में लिखा, लाल शाही से अंडरलाइन किया और लिखा IMP। IMP क्या होता है, इंपॉर्टेंट, या तो और जोड़ दो वी, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कहां रह गया, पुस्तक में, मस्तक में नहीं उतरा। अभी आप रोज का तो छोड़ो, अभी हम यहां आए हैं, कितना फ्री टाइम मिलता है। तो एक घड़ी भी काली न रखते हुए मथना है, दादी बाबा का जो पॉइंट है उसको, उसका मथन करना है। यहां से चले क्लास छूटा, यहां से चले डाइनिंग हॉल तक कितना मिनट लगता होगा, जितना भी हो उतना टाइम पॉइंट का मंथन चलता रहे, बाबा का साथ का अनुभव चलता रहे। क्लास के पहले गीत में बज रहा था, प्रभु कहां विराजमान है, निकट ही विराजमान है। तो बाबा को हम अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा बहुत नजदीक निकट ही अनुभव करें, तो इसके लिए हम व्यर्थ से अपने को फ्री रखना पड़ेगा, नहीं तो बाबा दूर बैठे देखता रहेगा। एक बार मुरली में बाबा ने साफ कहा, कभी कभी बाबा देखते हैं बच्चे इतना ज्यादा व्यर्थों में संकल्पों में डूब गए कि कभी कभी बाबा सोचते हैं कैसे भी करके इनको सुजाग करूं किसी के द्वारा, तो भगवान का संकल्प भी चलता है। शायद वो टच भी करता होगा, लेकिन जो व्यर्थ में बहुत ज्यादा बिजी होता है ना, वो टचिंग्स को भी कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर बहुत तेजी से स्पीड से चल रहा है ना व्यर्थ संकल्प। तो आज हम ये दृढ़ संकल्प करें कि अपने अंदर मैं उतरूंगा। कुआं है कुआं, क्योंकि अंदर बहुत सारा मेमोरीज है, यादें, पुरानी यादें। कभी कभी मन कोई पुरानी यादों को लेके चबाने लगता है, फिर उसके साथ जुड़े हुए कड़वे फीलिंग्स भी आते रहते हैं। अमुक व्यक्ति ने अमुक दिन मुझे ऐसा कहा था, ऐसा हुआ था, वो पुराने यादें आ जाते हैं। तो मन को स्वतंत्र नहीं रखने का, कहा जाता है मन को ज्ञान का आनंद चखाओ। यहां ज्ञान का मंथन में कितना रस है उसका अनुभव मन को कराओ, फिर मन भागेगा नहीं नेगेटिव के तरफ। अकल आ जाएगा कि पुरानी, तो आज तक पुरानी याद को हम रिवाइज करते रहे, दुखी का दुखी होते रहे, अब फुल स्टॉप लगाते हैं कि जो बीता सो बीता, अब आगे की देखो। तो ये एक एक सिद्धांत अगर हम बना के रखे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लेना पड़ता है, हम अपने साथ बैठना पड़ता है, खुद के साथ बात करना पड़ता है। बात करते हैं ना सभी, बाबा के साथ तो बात करते ही हैं, खुद के साथ भी करते हो, करके देखना। कभी बाबा कहते हैं खुद के ऊपर भी तरस खाओ, दुनिया की भटकती हुई आत्माओं पर तरस तो खाना ही है, हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन कभी कभी हम खुद भी तरस खाने योग्य बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कहां मेरे बच्चे, कहां बिठाया था दिल तख्त नशीन पर, लेकिन अब कर क्या रहे हैं, कितना नीचे उतर गए। तो उस समय अगर हम खुद को देखें तो हमारे ऊपर तरस आएगा कि नहीं आएगा। अभी खुद ही मैंने अपने को इतना नीचा गिराया मेरे संकल्पों द्वारा, अब उठाएगा कौन, उठाएगा कौन, खुद ही खुद को उठाना पड़ेगा। इसलिए बाबा की अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग सिद्धांत, सबके लिए अलग अलग। किसी ने मेरा निंदा की तो क्या, किसी ने मेरा बेइज्जती की तो क्या। तो अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग। आज बाबा कह रहे थे कि दुनिया वालों ने मेरी बहुत निंदा की, बोला ना आज। तो ब्रह्मा बाबा को कह रहे थे आज अभी तुम्हारा बारी है। तो कभी लोग गाली जब देंगे तो हम भी कभी कभी सोचते हैं स्वयं भगवान को नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे बख्शेंगे लोग, तो हमें भी गाली खानी पड़ेगी। तो क्या बड़ी बात है, जब परमात्मा की इतनी निंदा हुई तो हमारी नहीं होगी, तो होगी। तो बाबा की हर एक पॉइंट जो है, आप उसको दवा कहो या कुछ हथियार कहो, लेकिन हमारी मदद हर वक्त करेगी। बस अपने को सही वक्त पर सही पॉइंट याद करके काम में लेने का कला सीखना चाहिए। तो इसमें खुद के लिए कभी भी हम किसी रियायत नहीं दिखाएं। हम अपने अंदर जो व्यर्थ चल रहा है उसके लिए कोई पुष्टि नहीं दे। हाँ, ये सही है कि आपके सामने वाले ने बहुत गलत बोला, ये तो सही है, लेकिन वो गलत जो बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके कारण मेरे अंदर कौन से संकल्प चले ये इम्पोर्टेंट है। अगर उसने गलत बोला, मेरे अंदर गलत संकल्प चलने लगे, तो बाबा ने मुझे इतना अच्छी अच्छी पॉइंट्स पढ़ाया, उसका क्या हुआ। बाबा इसीलिए तो रोज रोज हमें पढ़ाता है कि मुझे ऐसे परिस्थिति आएगा, लोग फालतू आपका निंदा करेंगे, आरोप लगाएंगे, तब तुम्हें ये काम आएगी। इन एडवांस बाबा ने हमें सब हथियार दे रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर वही वी इम्पोर्ट, वेरी इम्पोर्टेंट रहा पुस्तक में, प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए कहा पहले छोटे छोटे चीजों से शुरू करो। कभी भी हमारा बहुत बड़ी कमियों के पीछे हमें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कोई कमी छोटी रहेगी कभी बड़ी रहेगी। समझो किसी में गुस्सा होने का आदत ज्यादा है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ गुस्सा हो गया तो अंदर क्या है, थोड़ा सा फीलिंग रहता है, बाबा इतना कहा फिर भी मैं इतना ही छोड़ सका। अभी फिलहाल इसको एक साइड में रखो, बाद में वो हाथ में आ जाएगा। पहले छोटी छोटी बातों से शुरू करो, छोटी छोटी खमियों पर पहले ध्यान देना, उसके ऊपर पकड़ आते ही थोड़ा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, हाँ मैं भी कर सकता हूं। लेकिन कभी भी ये फाइनल नहीं करना कि मेरे से इतना ही होगा। कभी कभी कोई कहता है ना, बस अब मेरे से इतना ही होने वाला है, और मैं इतना और कितना करूं, तो ये हुआ अपने भाग्य का लकीर लगा देना। क्योंकि क्षमता है हमारे अंदर पुरुषार्थ करने की और आगे बढ़ने की, लेकिन हम खुद को ही रोक रहे हैं और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं कि हमें ये आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरों का भाग्य को छीन नहीं सकता है, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, ये हम अच्छी रीति से जान लेना चाहिए। मेरा भाग्य मेरे हाथ में, अगर ये रास्ता बंद हो गया, किसी ने बंद कर दिया, तो भगवान ने मेरे लिए दूसरा रास्ता खुलेगा। बस मुझे भरोसा रखना चाहिए। तो ये रहा आज की चर्चा का विषय। तो अब विराम देने से पहले एक दो पॉइंट रिपीट करना चाहूंगा। सवेरे उठते ही मैं क्या सोचूं, उसका प्रोग्राम रात को सोने से पहले ही हो जाना चाहिए। रात को बाबा से गुड नाइट तो सभी करते हैं ना, तो गुड नाइट करते ही बाबा से बोलो, बाबा कल उठते ही मैं इस विचार को अनुभव करूंगा, ये विचार लूंगा। या भिन्न भिन्न संबंध लो, बाबा को फ्रेंड के रूप में अनुभव करो या कोई भी। प्रोग्राम देने से सुबह आंख खुलते ही मन वो काम शुरू कर देता है। सबसे डेंजर है मन को खाली रखने का। कुछ काम नहीं दिया, रेड सिग्नल। फिर क्या होगा, आप ना चाहते हुए आपके सामने ऐसे दृश्य घटेंगे जिसके कारण आपका संकल्प चले। आजकल दुनिया में एक सिद्धांत बहुत फेमस हो गया, कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत, थियरी ऑफ अट्रैक्शन। उसके अनुसार हम ही सब फीलिंग्स को खींचते हैं, बातों को या घटनाओं को खींचते हैं। खैर जो भी हो, ये तो आप साफ बता सकते हैं कि अगर मेरे अंदर ज्यादा व्यर्थ चल रहा है तो मैं ऐसे ही साथियों को बनाऊंगा, उसके साथ शेयर करूंगा, देखा ऐसे दीदी ने ऐसा बोला, इस सेंटर में ऐसा होता है, क्योंकि वो साथी भी उसमें रुचि रखने वाला है, वो भी बोलेगा हाँ हाँ मैं भी जानता हूं, और वो भी इसमें एक दो और ऐड करेगा, बस लेन देन चालू। फिर लगेगा कितना रूहानियत का रिश्ता है, लेकिन काहे का रूहानियत, चल रहा है नेगेटिव बातों का लेन देन और समझ रहे हैं फ्रेंडशिप बढ़ रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव को खींचेगा, ये भी एक खतरा है। फिर ग्रुप बना लेंगे आपस में, इधर भी जहां भी जाओ इकट्ठे जाएंगे चार पांच, चलते चलते परचिंतन चलता रहेगा, समझेंगे नहीं कि खड्डे में गिर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कल्याण कर रहे हैं उस आत्मा का, जिसका परचिंतन कर रहे हैं ना, उसका कल्याण के लिए हम कर रहे हैं चिंतन। तो ऐसे हम गलत फहमी में आ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। कोई इशारा करे तो गुस्से में आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव विचार अपने आप खींचे हुए चले आएगा। आप करके देखना, कहीं आपको चलते चलते एक बहुत अच्छी महावाक्य नजर में आएगा जो आपको बहुत मदद करेगा, और आगे चलते चलते कोई भाई एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको देगा, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ आज सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब मेरे तरफ है, कुछ मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपको अनुभव होगा। तो उस अनुभव का आधार क्या था, क्या था, उससे पहले आपने काफी समय तक गुड फीलिंग में थे। फिर वही नंबर लाइन याद करो, कहां थे आप, +4 +5 वहां थे। तो उसके कारण आपके साथ अच्छी अच्छी घटना होने लगी, विघ्न आया सामने, वो विघ्न भी हट गया या रूप परिवर्तन हो गया, ऐसा आपको अनुभव होगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, हाँ ये है, ये रास्ता खुलता जाएगा। तो ये सब आप यहां करने के लिए बहुत अच्छी मौका है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में बैठे हैं हम, कहां बैठे हैं? प्रयोगशाला। ये मेला का मेला भी है, एकांत का एकांत भी है। देखो, एकांत का रुचि जिसने ले लिया ना, वो भीड़ में भी एकांत का अनुभव महसूस करेगा। बस मैं अकेला बैठा हूं, बाबा को देख रहा हूं, उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे अर्जुन का कहानी है ना, पूछा क्या दिख रहा है, बोला सिर्फ आंख दिखता है और कुछ नहीं, क्योंकि निर्देशनता, बाण कहां मारना है, आंख। तो ये है एकांत का मजा। सवेरे उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी पहुंच जाओ योग में, साथियों का इंतजार नहीं करो। कोई करते हैं साथियों का इंतजार, वो भी तैयार हो जाएं, तब तक कमरे में बैठे, नहीं। ये हमारा स्व उन्नति का जर्नी है, इसमें हम अकेले हैं। भले आप गांव से आते वक्त साथ में ट्रेन में बैठ के आए, लेकिन यहां आपका सच्चा साथी शिव बाबा है। भले साथ में आओ जाओ, लेकिन बात नहीं करो, क्योंकि आप किससे बात करने में बिजी हैं? आपका मनमीत, मनमीत है ना साथ में, कहां है? आपका बाजू में बैठा है। तो उसके साथ बात करते रहेंगे तो आप भीड़ में भी एकांत का मजा ले सकेंगे, और वो आपका मनमीत आपको अच्छा अच्छा पॉइंट्स देता रहेगा, आपको हमेशा प्लस 4-5 पर ही रखेगा। बस इतने चर्चा के साथ आज हम अपना वाणी को विराम देते हुए ओम शांति।